यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणि नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्रास्यम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणि नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानि तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणि नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वरीयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणि नमः। देवियों, सज्जनों, आप सबको नमस्ते। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे किसी ने रिक्वेस्ट किया था इस विषय पर बोलने के लिए। सनातन धर्म में, जिसके आजकल हम हिंदू धर्म कहते हैं, जो कुछ थोड़ा यूनिकनेस है, उनमें से एक है द कॉन्सेप्ट ऑफ देवता। दुनिया में किसी दूसरे कल्चर में, सोसाइटी में या रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट इतने कैटेगरिकली क्लियर रूप में नहीं दिखता जितना इंडियन कॉन्टिनेंट में और सनातन धर्म में ये दिखता है। और क्योंकि हमारे खुद के जो इस धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, मोस्ट ऑफ वो लोग भी इस मामले में बड़ा धुंधला ज्ञान रखते हैं और मिसपरसेप्शन बहुत है, तो इसी बात पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देवता को समझने से पहले हम ईश्वर का एक ओवरऑल व्यू, जो सनातन धर्म में माना जाता है, उसको रिवाइज कर लीजिए। आप सबको पता है, मतलब ईश्वर जो इस सारे ओवरऑल एग्जिस्टेंस का जो क्रिएटर है, सस्टेनर है, डिसॉल्वर है, और जो अकेला वन है, इन्फिनिट है, इटर्नल सत चित आनंद है, और जो सब जगह रहता है, हमारे अंदर भी बाहर भी, अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, जो दृश्य है सीन है, जो अदृश्य है अनसीन है, सब जगह होता है। तो ये ओवरऑल ईश्वर के बारे में एक कॉमन जो सनातन धर्म में माना जाता है। तो देवताओं को समझने से पहले ईश्वर कितने हैं, मतलब गॉड कितने हैं, वो एक है। ये इसीलिए क्वेश्चन को क्लारीफाई करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो मॉडर्न हिंदुइज्म में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं और वो सोचते हैं बहुत सारे ईश्वर हैं, गॉड है। और जो नॉन हिंदू, वो भी सवाल पूछते रहते हैं कि हिंदू धर्म एक पॉलीथेइस्टिक रिलीजन है, मतलब वहां बहुत सारे गॉड्स होते हैं। पर शास्त्रों के, वेद से लेकर के इवन जो पुराण माइथोलॉजी जिसके बेस पर मॉडर्न हिंदुइज्म है, वहां तक भी सारे मानते हैं कि ईश्वर एक है। यह अथर्ववेद का मंत्र कहता है, न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते, न पंचमो न षष्ठ सप्तमो नाप्युच्यते, नाष्टमो नवम न नवमो दशमो नाप्युच्यते, य एतम देवम एकवृतम वेद तमिदम निगतम सहस एष एक एकवृत एक एव। वो ईश्वर एक है, अकेला है, इट इज वन एंड ओनली वन, इट हैज नो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाउ मेनी नंबर्स यू कैन काउंट, इट्स वन एंड ओनली वन। हां, ये जो ह्यूमन नेचर है उसको भी वेद समझता है, और वेद का, ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, एकम सत इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मान् एकं सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम् यमम् मातरिश्वानमाहु. Although people know that God in different ways, एकम सत, वो जो सत है, जो एग्जिस्टेंस है, वो एक है. जो विप्र लोक है, ज्ञानी लोक है, फिलोसफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो उसको डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करते हैं और उसके कारण लोग उस एक ईश्वर को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से जानते हैं. बट सत्य एक ही है, वो ईश्वर एक है. उस समय कोई इसको अग्नि, यम, इंद्र, वरुण के नाम से जानता था. बाद में कोई इसको आजकल वो अलग अलग नामों से जानते हैं. अलग अलग रिलीजन में भी अलग अलग नाम से जानते हैं. लैंग्वेज चेंज हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता है, समझ चेंज हो जाता है, पर वो एक ही ईश्वर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. श्वेताश्वेतर उपनिषद इसी को कहता है, एको. रिमेंबर द वर्ड ऑलवेज एक, वन. एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च. It says that God is one only and hidden in all beings. He pervades all and He is the inner soul of all beings. He presides over all actions and He dwells in all beings. Same thing, different language में एक ही ईश्वर सब जगह समाया हुआ है. छांदोग्य उपनिषद रिपीट करता है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, दैट गॉड इज ओनली वन विदाउट एनी सेकेंड. वेन वी से सेकेंड, ऐसा नहीं कि ईश्वर दो तो नहीं है, एक ही है. उसका कोई डिप्टी गॉड, कोई असिस्टेंट गॉड, कोई ज्वाइंट गॉड भी नहीं है कि भाई गॉड छुट्टी पर है तो आज डिप्टी गॉड काम संभाल लेंगे, ऐसा भी नहीं है. वो अकेला है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है. मतलब आप कहेंगे भाई प्राइम प्रेसिडेंट है तो एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, तो गॉड का कोई होगा, कुछ नहीं. नो द्वितीय, अकेला है, नो सेकेंड. इतनी सारी दो चार एग्जाम्पल देने का उद्देश्य था ये एस्टैब्लिश करके आगे बढ़ना कि ईश्वर एक ही है. हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, ईश्वर एक ही है. सारे शास्त्र खुले आवाज में ये बोलते हैं. फिर क्वेश्चन आता है, ये जो हम घर घर में देखते हैं, हर घर के अंदर पूजा घर में 10-12 फोटो लगे हैं, मंदिर में अलग अलग पूजा पद्धति हैं, हर हिंदू जानता है हजारों सैकड़ों तरह की गॉड्स मानता है. खाली वो मानता नहीं है, वो बड़ा एक्सपर्ट बनके दूसरों को समझाता भी है, अपने नॉन हिंदू फ्रेंड्स को भी. तो व्हाट डज इट मीन? जनरली इसे हम देवता कहते हैं. इंटरेस्टिंगली अगर आप देवता का किसी भी डिक्शनरी में ढूंढेंगे, इंग्लिश डिक्शनरी में, गूगल में जाएंगे, कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा. देवता की हर डिक्शनरी में देवता, अंग्रेजी डिक्शनरी की बात कर रहा हूं, अभी ना आप गूगल में भी जाएंगे, देवता को एक्सप्लेन किया गया है कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है. बहुत सारे जगह काफी हद तक राइट एक्सप्लेन किया है, पर उसका कोई सिनोनिमन नहीं है कि अंग्रेजी में उसकी पैरेलल वर्ड क्या है, नहीं मिलेगा. ज्यादा से ज्यादा कहीं डाइटी, डेइटी लिखते हैं, और वो डेइटी इसीलिए लिखते हैं कि वो एक मिसपरसेप्शन है, क्योंकि जो कि मॉडर्न हिंदू लोगों ने क्रिएट किया है उसके कारण. तो देवता एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था हमारे ट्रेडिशन में, जिसका सिंपल अर्थ था, निरुक्त उसको एक्सप्लेन करता है, देवो दानात वा दीपनात वा द्योतनात वा द्योस्थानो भवती इतिवा. अच्छा, मैं एक चीज क्लियर करूं, जब मैं देवता बोलता हूं, वो देव, देवी, देवता एक ही बात है. जब आप कहते हैं देवी, वो फेमिनिन वर्ड है, देव मैस्कुलिन वर्ड है, देवता कॉमन वर्ड है. तो ये तीनों का एक ही भाव है, देवी, देवता. जब मैं देवता बोलूं, आप उसमें देव, देवी, देवता तीनों को लेकर चलिए. तो उसका अर्थ क्या है? तो निरुक्त के आचार्य महर्षि यास्क लिखते हैं, देव का अर्थ एनीथिंग और बीइंग, मतलब कोई सेंटिएंट और इनसेंटिएंट कोई भी देवता हो सकता है, कोई मैटेरियल चीज भी देवता हो सकता है, जिसमें इनमें से कोई एक क्वालिटी हो। दानात, जो देता हो, कंट्रीब्यूट करता हो, हेल्प करता हो, ऑफर करता हो। दीपनात, इल्यूमिनेट करता हो या होता हो। द्योतनात, कैंडलिंग होता है। और द्युस्थाने, जो सेलेस्टियल एंटिटीज हैं, जैसे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनको देवता के रूप में हमारे शास्त्रों में यूज किया गया है। अगर इसको समराइज्ड करके बोलें, हमें हमारे लाइफ में जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, हमें सामने लाने में, हमारी एग्जिस्टेंस में, हमारे ग्रोथ में, जिस जिसका कंट्रीब्यूशन है, वो कोई मैटेरियल चीज हो, नॉन मैटेरियल हो, सेंटिएंट हो, इनसेंटिएंट हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, पानी हो, इंसान हो, सब देवता है। दूसरा, सेलेस्टियल एंटिटीज, सूरज, स्टार वगैरह जो होते हैं, वो भी देवता कैटेगरी में आते हैं। और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए कि देवता का मतलब गॉड या ईश्वर है। इट्स वेरी मच क्लियर। इसलिए तो देवता बेसिकली दो तरह के होते हैं, जड़ देवता, जड़ मतलब जो इनसेंटिएंट है, मैटेरियल है। जड़ में कौन आएगा? यूनिवर्स से लेकर के सूरज, चांद, गैलेक्सी से लेकर के मिट्टी, पत्थर तक सब जड़ है। और ये सब देवता है, क्योंकि इन सबका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। और इवन मॉडर्न इन हिंदू सोसाइटी में भी हम देखते हैं, आज भी लोगों को नदियों को, पहाड़ों को, पत्थरों को पूजते हैं। अब पूजते क्यों है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, पर देवता कंसेप्ट वहां आपको जड़ों में भी माना जाता रहा है। दूसरा है चेतन देवता। वो चेतना, वो परमात्मा भी चेतन है। दो तरह के चेतन देवता हैं, परमात्मा और आत्मा। जब आत्मा की बात करते हैं, हम सब उसमें आते हैं। तैतिरीय उपनिषद कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मां देवता है, पिता पापा देवता है, आचार्य टीचर भी तुम्हारी देवता है, अतिथि जो तुम्हारे घर में तुम्हें बिना बताए अचानक पहुंच जाए, कोई हेल्प मांगने नीडी हो, वो भी देवता है। ये सब देवता भी आते हैं, ये सब मनुष्य है, तो ये भी देवता कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जिनमें भी ये क्वालिटीज है देने की, शाइन होने की, दूसरों को शाइन कराने की, सब देवता हो सकते हैं। इसीलिए हमारे यहां पेड़, पौधा, नाले, नदियां, गाय, बकरी, सब देवता होते थे। पर अगेन, वो ईश्वर नहीं है, इट्स नॉट गॉड। सो देवता का ट्रांसलेशन ईश्वर नहीं है। एक कंफ्यूजन और आया, ये बहुत आम बातचीत में चर्चा होती है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है। तो इसी प्रसंग से किसी ने मुझे लिखा था कि आप इस विषय पर बोले। वेदों में या वैदिक लिटरेचर में और लेटर जो लिटरेचर, इसमें डेफिनेटली सैकड़ों हजारों तरह के देवताओं का डिस्क्रिप्शन है। हजार भी हो सकते हैं, लाखों का कितने भी हो सकते हैं, कोई नंबर नहीं है। पर उनको क्लासिफाई किया गया 33 देवा। जो शब्द मिलता है त्रयस्त्रिंशत कोटि देवा, कोटि संस्कृत में दो मीनिंग होता है। कोटि एक नंबर है, दैट मीन्स क्रोर, 10 million इजकल टू 1 कोटि। और कोटि का मतलब होता है प्रकार, टाइप, किस टाइप का घर है, किस टाइप की खाना है, किस टाइप का इंसान है, तो टाइप प्रकार। वैदिक साहित्य में बताया गया कि ये जो हमारे जड़ और चेतन तरह के जितने भी देवता हैं, जो भी हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सबको 33 तरह से डिवाइड किया गया, 33 टाइप्स ऑफ देवताज हैं। बाद में हमारी सोसाइटी में इग्नोरेंस इल्यूश बहुत बढ़ा, हर चीज को जैसे कि हमने गलत तरीके से जाना, हमने नहीं जाना, हमें बताने वालों ने बताया, क्योंकि वो भी बड़े इलिटरेट रहे, और ग्रेजुअली वो चीजें फैलता गया। वो 33 प्रकार की देवताएं कौन कौन है, उनकी जो 33 टाइप की क्लासिफिकेशन है, शतपथ ब्राह्मण और भी ग्रंथों में है, पर यहां मैं शतपथ ब्राह्मण का कोटेशन करता हूं, जो चैप्टर 1 9th सब चैप्टर और 2nd मंत्र में आता है। कितने? अष्टौ वसवः, एकादश रुद्रः, द्वादशादित्यः, इंद्र प्रजापतयश्च। जो कहते हैं 8 वसु, नंबर है 8, पहला है वसु क्लास। वसु का अर्थ होता है, तो हिंदी में भी बोलते हैं ना, निवास वास, उसी से बना है, हैबिटेट, जिसमें रहा जाता है, रहा जा सकता है, रहने लायक है, वो वसु है। अष्टौ वसु है, 8 अबोड्स। फिर आया एकादश रुद्रः, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। रुद्र मतलब रुद्र से आप समझेंगे शिवजी महाराज, जो रुद्र उनका नाम है। रुद्र का सिंपल मीनिंग होता है रुलाने वाला, द पर्सन हु मेक्स यू क्राई। तो 11 ऐसी देवता हैं जो आपको रुलाते हैं, वो भी समझेंगे। द्वादश आदित्य, आदित्य कहते हैं, मतलब आजकल की भाषा में तो आदित्य से सिरा सूरज पर पहुंच जाते हैं, जो रसों को सोखता है। पैदा होने के दिन से ही हम मृत्यु के करीब जाते रहते हैं, और उसकी काउंटिंग आप डे वीक मंथ ईयर से करते हैं। यहां उसको मंथ से लिया, 12 महीने साल के, जो डेफिनेटली ये सूरज से रिलेटेड है, सूर्य के कारण, सन के मूवमेंट के कारण आपके महीने बदलते रहते हैं, ये साल बदलते रहते हैं। ये जो 12 महीने है, 12 मंथ्स है, दीज आर द 12 आदित्याज, ये भी देवता है। दूसरा है, अगला है इंद्र और प्रजापति, इनको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। पहला है अष्टौ वसु, 8 वसु हैं। वसु मैंने कहा हैबिटेट्स हैं, रहने लायक हैं। उन 8 में से 5 जो है वो आपको पता है, ये अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, ये 5 महाभूत हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनसे ये सारी दुनिया बनी है। ये सारा यूनिवर्स इन 5 चीजों के, 5 एलिमेंट से बना है। हियर अर्थ डजंट मीन टू द अर्थ प्लैनेट, अर्थ मीन्स सॉलिड थिंग, जो भी सॉलिड है। मेरे शरीर में भी अर्थ है, ये जो बोन है, फ्लेश है, ये सब अर्थ के पार्ट है, ये सब अर्थ है, ये अर्थली चीज है, सॉलिड चीज है। वाटर, ये सिर्फ पीने वाला वाटर नहीं, एनीथिंग व्हिच इज इन लिक्विड दैट इज कॉल्ड वाटर। फायर सिर्फ आग नहीं, एनर्जी, जो भी एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है वो फायर। एयर, उसमें जितने तरह के गैसेस हैं, एयर्स हैं, वो सब एयर में आते हैं। और ईथर स्पेस, आकाश। इन 5 चीजों से सारी दुनिया है, कहीं इनमें से किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। स्टार्स हैं, उसमें ईथर भी है और फायर है। वहां अर्थ कम होगा, वाटर बहुत कम होगा, बिल्कुल कम मात्रा में होगा। बस वाटर है, उसमें एनर्जी की मात्रा कम हो सकती है, ईथर कम हो सकता है, पर 5 चीजें सब में कम बहुत रहता ही रहता है। और इन्हीं से ये दुनिया बनी है, और ये दुनिया हमारा अबोर्ड है, रहने लायक चीजें। इसके अलावा 3 चीजें बताया, चंद्र, सूर्य और तारा। चंद्र रिप्रेजेंट्स द ऑल द प्लैनेट्स, स्टार जो कि एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सन हमारे प्लैनेट्स की सेंटर है और बाकी जितने स्टार्स हैं वो सब वसु हैं। ये आठ वसु हैं जो देवता हैं, अगेन देवता ध्यान रखिए, जिनका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, या जो सेलेस्टियल एंटिटीज हैं इनमें वो स्टार और सन आते हैं। आठ वसु। एकादश रुद्र, ग्यारह रुद्र हैं जो आपको रुलाते हैं। वो कब रुलाते हैं, कौन है वो? तो शतपथ ब्राह्मण और बाकी ग्रंथों में कहते हैं ये जो आपके दश प्राण हैं, वाइटल एयर्स हैं, और ग्यारहवां आपका आत्मा, ये होते हैं रुलाने वाले। क्यों रुलाते हैं, इनको रुद्र क्यों कहते हैं? जिसको भी देखो इसी से परेशान है कि प्राण निकल ना जाए, आत्मा निकल ना जाए। मरने से हर आदमी डरता है, ना खुद के मरने से भी और दूसरों के मरने से भी। और मरते कब है, जब आपकी ये प्राण और आत्मा निकल जाते हैं तो आदमी मरता है, इसी से डर लगता है। इसीलिए जिस घर में भी कोई मरता है सब रुलते रोते हुए मिलते हैं, ये रुनाले वाले चीजें होते हैं, इसीलिए इनको रुद्र कहा। तो रुलाने वाले कहने का भाव क्या था कि टेक केयर ऑफ देम, संभालो इनको कि रुलने की जरूरत ना पड़े। ये दश प्राण क्या है? जब आप बाहर से अंदर सांस लेते हैं, वो जो एटमॉस्फेरिक एयर है जिसको आप अंदर लेते हैं, वो अंदर जाने के बाद वो फिर एयर के रूप में नहीं रहता, वो वाइटलिटी बन जाता है, वो एनर्जी बन जाता है, आपकी जीवन का लाइफ का सोर्स बन जाता है, बेस बन जाता है। पांच मुख्य प्राण है, प्राण अपान व्यान समान उदान, और पांच उपप्राण है जो उनके सबोर्डिनेट प्राणाज हैं। पहले बहुत बार आपने सुना होगा, ये एक मैंने छोटी सी चार्ट बनाई आपको इजीली समझ में आ जाए। प्राण जो आप सांस लेते हैं, आपकी नाक से लेकर और आपकी फेफड़े तक, चेस्ट तक जाता है, जो बेसिकली आपको ऑक्सीजन देता है और पूरे बॉडी को फंक्शन में रखता है, उसे कहते हैं हम प्राणवायु। अपान वायु बेसिकली आपकी बॉडी में नेवल से फीट तक रहता है, और जो नीचे की ओर जिसकी मूवमेंट होता है वो हेल्प करता है आपको एलिमिनेशन का, डाउनवर्ड और आउटवर्ड मोड मूवमेंट में वो गैस या एयर आपको हेल्प करता है चीजों को बाहर निकालने में। समान वायु जो मोस्टली आपकी पेट में रहता है, स्टोमक में, उसका काम है जो भी आप अंदर इंटेक करते हैं, खाना पीना जो भी लेते हैं, उसको जो भी पक जाने के बाद उसको हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, जो डाइजेस्टिव एनर्जी है जो एसिड कहते हैं, और उसका जो रस या एनर्जी जो कुछ भी ब्लड जो कुछ निकलता है उसको सब जगह बराबर रूप में जहां जिसकी जरूरत है पूरे बॉडी में उसको भेजने में हेल्प करता है। दूसरा है, अगला है चौथा उदान वायु, जिसका नेचर असेंडिंग है, जैसे अपान है वो डिसेंडिंग है, नीचे की ओर मूव करने में आपको हेल्प करता है। मुझे समझ पता नहीं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि कहीं भी कोई मूवमेंट होता है ना उसमें एक प्रेशर जरूर होता है, वो प्रेशर जनरली एयर प्रेशर से होता है, गैस प्रेशर से। उदान वायु जो असेंडिंग एनर्जी है जो आपके चेस्ट से सर तक होता है, मोस्ट ऑफ जितने भी एक्टिविटीज आप ऊपर की लेवल पर करते हैं उसमें उदान वायु आपको हेल्प करता है। और लास्ट है व्यान, जो पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, आपके पूरे नर्व चैनल में, नर्व सिस्टम में जो फैला हुआ है, आपकी हर वो एनर्जी हो कुछ भी हो सब उसको सर्कुलेट करने में जो प्रेशर का काम हेल्प करता है वो व्यान वायु है। ये पांच वायु हमारे अंदर काम करते हैं, उनको हेल्प करने के लिए पांच उपप्राण है, उनको कहते हैं नाग कुर्म कृकल देवदत्तांड धनंजय। ये दश प्राण आपकी ओवरऑल एग्जिस्टेंस को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। जब कोई मरता है हम क्या कहते हैं, प्राण त्याग दिया, मतलब प्राण निकल गया, तो डर रोना इसी से आता है। दूसरी आत्मा, डेफिनेटली आत्मा निकल जाए तो आदमी मरा हुआ मिलेगा, यही रोने का कारण है। पूरी जिंदगी में हम जो भी करते हैं इसीलिए करते हैं कि ना मरे, मरे तो ढंग से मरे, बीमारी कम हो वगैरह वगैरह, प्राण ना निकले, इसलिए इसको रुद्र कहा, आत्मा को रुद्र कहा, प्राणों को रुद्र कहा। ये 11 हैं, 10 प्राण और एक आत्मा। द्वादश आदित्य, जैसे मैंने अभी बताया, साल के 12 महीनों को द्वादश मीन्स 12 मंथ्स को द्वादश आदित्य कहते हैं। दीज आर 12 आर द एक्ट ऑफ सन, इस सूर्य के ही ये मूवमेंट से ये 12 महीने बनते हैं। आप एक हफ्ता 7 दिन भी बोल सकते हैं, 24 मिनट भी बोल सकते हैं, तो हमारे वो 12 महीने का लिया। और ये 12 महीने जो हमारे लाइफ को मूव करने में, आगे बढ़ने में और आफ्टर ऑल जाकर के मरने के करीब ले जाता है एज के हिसाब से, इसीलिए इनको आदित्य कहा। ये कितने हुए? ये 12 आदित्य, 11 रुद्र, 12 11 23 8 31। अब बच गए 2, इंद्र। इंद्र वैसे पौराणिक भाषा में इंद्र कहते हैं मेघ की देवता, लॉर्ड ऑफ रेन। तो जो वो जो बादलों में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो लाइटनिंग पैदा होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। यहां जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, आप मत सोचिए कि इसी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, संस्कृत में उसका शब्द है विद्युत। विद्युत वो सारे एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होते हैं, वो लाइटनिंग हो या आपके घर में जो मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी आती है, इंद्र उसी का नाम है, उस विद्युत की, बिजली की नाम है। और प्रजापति, यज्ञ का दूसरा नाम है प्रजापति। यज्ञ वो एक ऐसा एक्ट जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ये जो आप अग्नि में आहुति डालते हैं वो भी यज्ञ है, पर सिर्फ यही यज्ञ नहीं है। हमने बहुत बार इस पर डिस्कस किया है, कोई भी काम जो कलेक्टिव वेलबींग के लिए हो, सेल्फलेस होकर के कलेक्टिव वेलबींग के लिए किया जाए, वो सब यज्ञ है। कोई भी छोटा से छोटा काम जब कलेक्टिव वेलबींग के लिए, वो यज्ञ। बड़ा से बड़ा काम जब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया जाए, वो सिंपल काम होता है। तैतरीय ब्राह्मण कहता है यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, एनी एक्ट विच इज बेस्ट, दैट इज यज्ञ। तो बेस्ट एक्ट क्या होता है? बेस्ट एक्ट का डेफिनेशन है जो सबकी भलाई के लिए हो वो अच्छा काम है, जो खुद के लिए हो बुरा नहीं कहा, बोले काम है। तो यज्ञ को प्रजापति कहा, वो भी देवता है, क्योंकि हमारे सर्वाइव के लिए कलेक्टिव वेलबींग बहुत जरूरी है। आपके पास करोड़ों डॉलर हो, बड़ा बढ़िया घर हो, कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके आसपास कोई दुकान ना हो, कोई गाड़ी चलाने वाला ना हो, कोई फार्मिंग करने वाला ना हो, कोई डॉक्टर ना हो, कोई इंजीनियर ना हो, कोई काम करने वाला ना हो, तो आप कैसे जिएंगे? कपड़े बेचने वाला ना हो, कपड़े बनाने वाला ना हो, आप खुश हैं क्योंकि सारी दुनिया आपकी सेवा में लगी हुई है, आप सिर्फ पैसा देते हैं। तो पैसे देके आप, अगर कोई होगा ही नहीं तो पैसे देकर आप कहां क्या कपड़े खरीदोगे? पैसे से आपकी लाइफ नहीं चलती है। आपकी लाइफ चलती है क्योंकि हजारों लाखों लोग आपको लाइफ चलाने में सपोर्ट करते हैं। वो दुकानदार भी, गाड़ी चलाने वाला भी है, वो फार्म एग्रीकल्चर करने वाला भी, किसान भी, डॉक्टर भी, इन सब के कारण लाइफ चलता है। आप सिर्फ क्योंकि सोसाइटी में रहने के लिए एक्सचेंज जरूरी है। प्राचीन काल में एक्सचेंज दूसरे तरह से होता था भाई, आप कुम्हार के पास जाता, किसान जाता है घड़ा लेने के लिए, पैसा नहीं, उस समय पैसा एक्सचेंज का मीडियम नहीं था, वो उसको ग्रेन्स अनाज देता था, उसके बदले घड़ा लेता था। कुम्हार डॉक्टर के पास जाता था, उसको घड़ा देता था, उसको डॉक्टर को घड़े की जरूरत है, उसको भी खाना बनाना है, उसको भी पानी रखना है, वो उसकी इलाज करता था, एक दूसरे को एक्सचेंज करते। आजकल एक्सचेंज की जगह आ गया मनी, मनी सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए, पर अगर देने वाला ना हो तो क्या करेंगे आप? इसी का नाम है यज्ञ, कि कलेक्टिव वेलबींग में जीने की इच्छा रखना है। तो ये 33 टाइप्स ऑफ देवताज, क्योंकि इनका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है सर्वाइव के लिए, खुश रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी, खुश रहने के लिए भी, ग्रोथ करने के लिए भी। और इन देवताओं का जो देवता है उनको क्या कहते हैं, महादेव। जो परमात्मा है, ईश्वर है, जिसको आप अंग्रेजी में गॉड कहते हो, वो देवताओं को, वो भी देवता है, क्योंकि वो भी सबको यही सब गुण उसमें है, दानात्वा दीपनात्वा, वो सबका केयर करता है। पर इन देवताओं की वो देवता है, ये देवताओं का भी केयर वो करता है, वो महादेव जो परमेश्वर है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, जो भी शब्द आप यूज करते हैं, दूसरे लैंग्वेज में दूसरे दूसरे वर्ड होंगे, जो भी जिस भाषा में जो भी वर्ड हो, वो परमात्मा जो शुरू में हमने डिस्क्राइब किया, जो इस संसार को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, पालने वाला, हम सबका केयर करने वाला, वो परमात्मा होता है, उसे हम देवता कहते हैं। तो ये 33 प्रकार, 33 टाइप्स ऑफ देवता, नेवर ट्राई टू ट्रांसलेट इट एज गॉड्स, क्योंकि फिर आप खुद भी कंफ्यूज होंगे, सारी दुनिया को कंफ्यूज रखेंगे। मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन देवताज एंड गॉड। गीता में हमने जब गीता की चर्चा की थी, तब 16 चैप्टर में काफी डिस्कस किया था कि ये देवता मतलब क्या होता है। तो उसमें पूरे के पूरे चैप्टर में है देवता और असुर, ये क्वालिटीज हो, अंग्रेजी में पढ़ते जाइए, मैं इनको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये क्वालिटीज जिसमें है वो देवता कैटेगरी का इंसानों में, और जिनमें ये क्वालिटीज है आगे भी आएगा, वो सब राक्षस कैटेगरी में। बहुत सारे एग्जाम्पल हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। आप रामायण में रावण को राक्षस बोलते हैं, असुर बोलते हैं, और उसका भाई विभीषण इंसान है, और उसका एक दूसरा भाई है स्टेप ब्रदर कुबेर, वो देवता है। मतलब एक ही, अगर राक्षस एक अलग कौम होता फिर तो सारे राक्षस ही होते फैमिली में। रावण कुंभकर्ण तो राक्षस कहलाते हैं, उसका एक भाई बेचारा इंसान है, बिल्कुल सीधा साधा इंसान है, और दूसरा देवता है। महाभारत की देखिए, अब कंस को कहते हैं कंस राक्षस है, और उसका पिता वो इंसान है, और उसका भांजा वो देवता है। एक ही घर में राक्षस है, देवता है, इंसान है। मतलब हमारे इंसानों में भी जो एक प्रॉपर क्वालिटीज लेकर, ये क्वालिटी ये गीता का 16 चैप्टर में है, ये क्वालिटीज हो, वहां इनमें से कुछ क्वालिटीज हो, वो देवता कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, रेस्पेक्टेबल हो जाते हैं। और जो इससे ठीक अपोजिट टाइप के जिनके अंदर गुण है, वो असुर या राक्षस कहलाते हैं। वो इंसानों में ही, पशुओं में ही कोई राक्षस होता है, कोई देवता होता है, कोई होता है। एक और देवता का और एक डायमेंशन है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मॉडर्न हिंदू ट्रेडिशन, मॉडर्न जब मैं कहता हूं, पिछले 1200 साल से जो हिंदू ट्रेडिशन है वो मॉडर्न है, वो मॉडर्न जो हिंदू ट्रेडिशन में जो देवता का कंसेप्ट है, वो जिसको आजकल हर घर घर में हम पूछते हैं वो कौन देवता है, उसकी चर्चा तो हमने नहीं की। ये गणेश, शिव, वो दुर्गा वगैरह वगैरह, ये सब कौन है, इनका तो हमने कोई रेफरेंस नहीं लिया। हिंदू मतलब सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्क्रिप्चर हैं, टेक्स्ट हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ जानना है तो आपको उपनिषद पढ़ना पड़ता है, आपको सोशल लॉज रूल्स रेगुलेशंस जानना है तो धर्मशास्त्र आज पढ़ते हैं, आपको फिलोसफिकल एस्पेक्ट समझना है तो आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं। हर एक के लिए अलग अलग शास्त्र है, इसी तरह माइथोलॉजी के लिए भी टेक्स्ट है। माइथोलॉजी समझते हैं, सिर्फ माइथोलॉजी का मतलब है जिसमें मीथ है, मीथ समझते हैं मतलब जो फिक्शन है, मोस्ट ऑफ फिक्शंस। और ये बड़ा यूनिवर्सल फेनोमेना है, वो ग्रीक माइथोलॉजी, इजिप्शियन माइथोलॉजी, चाइनीज माइथोलॉजी, मैक्सिकन माइथोलॉजी, दुनिया में सारे पुराने जितने भी कल्चर सिविलाइजेशन रहे हैं सब जगह माइथोलॉजी चलती है। मोस्ट ऑफ सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया ये सो कॉल्ड मॉडर्न रिलीजन वालों ने, तो हमारे देश में बचा हुआ है, इसलिए वो माइथोलॉजी अभी भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो माइथोलॉजी में स्टोरीज होते हैं, कुछ स्टोरीज उसमें रियल इंसिडेंट भी होता है और मोस्ट ऑफ स्टोरीज फिक्शन होता है। स्टोरीज की जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर्स भी मॉडर्न हिंदुइज्म में देवता के रूप से जाने जाते हैं, और वही जो फिक्शनल कैरेक्टर हैं पुराणों में, एक चीज ध्यान रखिए, पुराण 18 पुराण जो माइथोलॉजी है वो अलग है, महाभारत रामायण और काउंटेड आज इतिहास हिस्ट्री वो अलग है। मैं 18 पुराणों की बात करते हैं। ये जो पुराणों में जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जो चरित्र हैं, पात्र हैं, जैसे ड्रामा में एक्ट में, वो कैरेक्टर्स ग्रेजुअली धीरे 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 हमारे घर में ईश्वर की जगह पूजा का स्थान ले लिया, जो कि डेफिनेटली फिक्शनल है। और वो जो देवताएं या जो पौराणिक कैरेक्टर हैं, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वो समहाउ धीरे धीरे एक एक इस कॉस्मोस में, इस विश्व परिप्रेक्ष्य में अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज और हेड के रूप में भी डिस्क्राइब्ड किए गए। जैसे जिसको धन चाहिए किसको पूजे, भाई लक्ष्मी की पूजा करो, तो लक्ष्मी इज द हेड ऑफ द वेल्थ डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। वाला जैसे मिनिस्ट्री में सब गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो पुराण की स्टोरीज में फिर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, अब पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं कौन है सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, और पुराणों में सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन सरस्वती है, विद्या देवी। अब स्किल डेवलपमेंट एक नया नया सब शुरू हो रहा है जहां बुद्धि काम करती है, तो हेड ऑफ द बुद्धि डिपार्टमेंट गणेश जी। आजकल गणेश जी का बुद्धि का काम कम हो गया है, वो विघ्नहर्ता के मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में ज्यादा अब डोमिनेट होने जा रहे हैं लोगों के बीच में। मतलब लोग भी अपने आप क्या होते हैं ना, हम बड़े हिंदू लोग बहुत समझदार लोग होते हैं, हम अपने हिसाब से देवताओं का भी प्रायोरिटी कम बहुत करते रहते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग देवताओं को भी, जो 100 साल पहले जिसको पूजते थे उसको आउट कर दिया, उसकी जगह नए देवता लाए, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देवताओं को कम बहुत आंकते रहते हैं। तो फिलहाल गणेश जी का काफी डिमांड चलता है, नो डाउट, और वो इसीलिए नहीं कि वो बुद्धि की देवता है, हेड ऑफ द बुद्धि, जबकि उनके डिपार्टमेंट में बुद्धि मेनली आती थी पुराणों में, पर ये अचानक कहां से शुरू हो गया कि अब वो विघ्नहर्ता ज्यादा हो गए क्योंकि लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है। सो नाउ गणेश जी इज नोन एज द प्रॉब्लम सॉल्वर, सो मोस्ट ऑफ पीपल लाइक हिम सो मच, सो दैट द अनदर कैरेक्टर। इसी तरह आपकी विद्या बुद्धि, आपके पानी का डिपार्टमेंट वरुण जी के पास है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये जो बारिश होना ना होना, ये जो ऊपर वाले पानी का डिपार्टमेंट इंद्र के पास है, तो आप नाम लेते जाइए, सबका डिपार्टमेंट फिक्स है, काम करते हैं। तो रिमेम्बर दीज आर पौराणिक कैरेक्टर्स, पुराणों में इन कैरेक्टर, और उनकी फैमिली है, घर गृहस्थी है, सब कुछ है, तो चलता है। तो इस तरह पौराणिक चरित्र जो है, अच्छा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या हिंदू कॉन्टेक्स्ट में ये पौराणिक कैरेक्टर होते हैं, ये दुनिया के सारे, मैंने पहले बताया वो ग्रीक माइथोलॉजी, रोमन, इजिप्ट, मिस्र, जहां जहां भी सिविलाइजेशन बढ़ा है वो सब जगह आपको माइथोलॉजीज होते हैं। अब वो बुक में रह गए, बच्चे पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। बाकी माइथोलॉजी, हमारे माइथोलॉजी स्टिल इट्स पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, हमारे मंदिर में भी, हमारे घर में भी, हमारे डिस्कशन में भी वेरी मच पार्ट ऑफ। बट रिमेम्बर, वो इवन पुराण के पुराणों में भी वो ईश्वर के रूप में नहीं जाने जाते, उनका ट्रांसलेशन करेंगे तो वो गॉड नहीं हो सकते हैं, वो देवता के रूप में जाने जाते हैं, वो भी देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो देवता का ये जो एक दूसरा डायमेंशन है वो पिछले 1000 साल से ज्यादा डोमिनेटिंग स्टेज पर है, ये पौराणिक कैरेक्टर वाला जो देवता का डायमेंशन है। और देवता का जो समझने लायक डायमेंशन जो अभी आपने सुना वो ऑलमोस्ट काफी पीछे चला गया है, क्योंकि मैंने जैसे कहा हमारे हिंदू ट्रेडिशन में कौन इसको करता है वो एक अलग बात है, पर हम हर 100-200 साल में हम देवताओं का, जैसे वो डेमोक्रेसी में सरकार चेंज हो जाता है तो हम उसी तरह देवताओं को चेंज करते रहते हैं। 1000 साल 800 साल पहले एक पर्टिकुलर देवताओं के मंदिर ज्यादा दिखते थे, ब्रह्मा विष्णु महेशों के मंदिर ज्यादा दिखते थे, फिर धीरे धीरे अब कम होता गया, उसकी जगह राम कृष्ण दुर्गा शिव का भी बहुत मंदिर होता था, दुर्गा का भी, अब वो कम होता गया, राम कृष्ण की संख्या बढ़ने लगे मंदिर, अब धीरे धीरे वो साइड होते गए, फिर छोटे छोटे अपने अपने एरिया के नए नए देवता आने लगे। अब तो बिल्कुल जो करंट सिचुएशन है कि पौराणिक देवताएं ऑलमोस्ट अब पीछे जा रहे हैं, उसकी जगह ये बाबा लोग देवता बन के घरों में आ गए हैं, साईं बाबा, शिरडी बाबा, अब ये आशाराम बापू, अमुक बापू, अब मंदिर में वो फोटो अब राम कृष्ण के कम दिखते हैं, बाबाओं के ज्यादा दिखने लग गए। सो वी आर वेरी मच स्मार्ट, वी नो व्हाट टाइप ऑफ देवता वी नीड व्हेन, सो वी जस्ट चेंज द गवर्नमेंट, द वे वी चेंज आवर गवर्नमेंट वी ऑल्सो चेंज द देवताज फ्रीक्वेंटली, और बड़े बड़े देवताओं को चेंज करते रहते हैं। पर रिमेंबर, ईश्वर वही है जो सबसे शुरू में हमने आपको बताया था, जो संसार का क्रिएटर है, सस्टेनर है, डिस्ट्रॉयर है, हम सबका केयरटेकर है, जो सूरज चांद जिसके कंट्रोल में चलते हैं वो ईश्वर है, बाकी ये देवता हैं। दोनों का डिस्क्रिमिनेशन आप ध्यान रखें तो आपको अपने रिलीजियस एक्टिविटीज को, स्पिरिचुअलिटी को परफॉर्म करने में आसान होगा, दिमाग ओपन होगा, समझने में क्लैरिटी आएगी। और अगेन, जो जिस टॉपिक के बहाने इतनी सारी डिस्कशन किया वो था वो 33 कोटि देवता, रिमेंबर दीज आर 33 टाइप्स ऑफ देवता। लास्ट में एक सुंदर श्लोक हमारे आर्य समाज के एक बड़े अच्छे स्वामी जी, स्वामी दीक्षानंद जी बोला करते थे, मेरे साथ आप मिलके बोल सकते हैं, केचित वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचित वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः, व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिरां प्रणेता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। व्यास कहते हैं कुछ लोग मानते हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो बहुत छोटे लोग हैं, कुछ लोग मानते हैं जिनके पास कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है वो बड़े छोटे लोग हैं, पर महाभारत आदि अनेक शास्त्रों को लिखने वाला व्यास कहता है छोटा वो है जो ईश्वर को भजता नहीं, ईश्वर को मानता नहीं, ईश्वर को याद नहीं करता। इसलिए अपने आप को बड़ा बनाएं, ईश्वर की भक्ति करें। इसी भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी को कभी किसी टॉपिक के बारे में आप सजेस्ट करना चाहते हैं, आपको सुनना है या आप चाहते हैं दूसरे लोग जाने, प्लीज सजेस्ट मी। आप लिखकर बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, अच्छा होगा। कोई ऐसा टॉपिक जो सबको सुनना चाहिए, जो आपके इंटरेस्ट है, तो जरूर मैं उसको इंक्लूड करूंगा अपने प्रवचन में। बहुत बहुत धन्यवाद।